एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
ज्ञान गोष्ठी में आप सभी सुनने वालों का स्वागत है।
मैं हूँ आपका पहला मेजबान।
और मैं हूँ आपकी दूसरी मेजबान।
आज हम एक ऐसे शब्द पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे जो हम रोज सुनते हैं।
हाँ बिल्कुल, खासकर राजनीति में। और अक्सर मतलब सुनते ही शायद थोड़ी त्योरियां चढ़ जाती हैं, विचारधारा या आइडियोलॉजी।
बिल्कुल, और इस कह सकते हैं सफर पर हमारा गाइड है माइकल फ्रीडन की किताब आइडियोलॉजी अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन।
हाँ, और ये किताब ना इस शब्द से जुड़ी जो एक नकारात्मक सोच है उसको चुनौती देती है।
सही कहा, क्योंकि जैसे ही हम विचारधारा सुनते हैं तो दिमाग में फौरन पता नहीं क्यों पक्षपात या कट्टरता या कोई झूठा प्रचार, ऐसी तस्वीरें आती हैं।
बिल्कुल, कई लोग तो मुझे लगता है गर्व से कहते हैं, मेरी कोई विचारधारा नहीं, मैं तो बस प्रैक्टिकल हूँ।
हाँ, लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? क्या ये मुमकिन भी है?
फ्रीडन कहते हैं
हाँ।
नहीं, बिल्कुल नहीं। और आज के समय में आप देखिए राजनीतिक बहसें कितनी तेज, कितनी बंटी हुई हैं।
हाँ, ध्रुवीकरण बहुत ज्यादा है।
बिल्कुल, तो ऐसे में ये समझना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो जाता है कि विचारधाराएं असल में हैं क्या, उनका रोल क्या है समाज में और उनका असल मकसद क्या होता है।
और ये किताब हमें वही समझने में काफी मदद करती है।
तो चलिए पहले लेखक से थोड़ी जान पहचान कर लें, माइकल फ्रीडन।
हाँ जरूर, माइकल फ्रीडन जो है वो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में राजनीति के एमेरिटस प्रोफेसर हैं और लंदन विश्वविद्यालय के SOAS से भी जुड़े हैं।
और उन्हें मतलब विचारधाराओं के अध्ययन में दुनिया के सबसे अहम लीडिंग विशेषज्ञों में गिना जाता है।
उनकी सबसे खास बात क्या है? वो है विचारधारा को समझने का उनका अपना एक तरीका।
हाँ, जिसे वो संरचनात्मक विश्लेषण कहते हैं, मॉर्फोलॉजिकल अप्रोच। सुनने में थोड़ा भारी लगता है ये शब्द,
हाँ, अकादमिक सा
है ना? पर इसका मतलब काफी सीधा है। वो विचारधारा को उसके ढांचे से समझते हैं, जैसे हम किसी इमारत को समझने के लिए उसकी नींव, दीवारें, छत देखते हैं ना।
हाँ बिल्कुल,
वैसे ही वो विचारधारा की अंदरूनी बनावट, उसके हिस्सों के आपसी रिश्ते को देखते हैं।
और ये सिर्फ हवा हवाई बातें नहीं हैं। उन्होंने उदारवाद, समाजवाद, रूढ़िवाद, इन सब बड़ी विचारधाराओं का विश्लेषण करने के लिए अपने इस तरीके का बाकायदा इस्तेमाल किया है।
और इतना ही नहीं, उन्होंने जर्नल ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज नाम की एक बहुत ही प्रतिष्ठित पत्रिका भी शुरू की।
तो मतलब साफ है, उनका एक मिशन है, एक मकसद है, विचारधारा शब्द को जो एक गाली जैसा बना दिया गया है उसे बचाना।
सही कहा, और उसे राजनीतिक दुनिया को समझने के एक गंभीर और जरूरी औजार के तौर पर वापस स्थापित करना। वो दिखाते हैं कि विचारधारा कोई बीमारी नहीं है।
बिल्कुल, राजनीतिक सोच का एक जरूरी हिस्सा है, उसका एक तय रोल है।
हाँ अच्छा, अब किताब पर आते हैं। आइडियोलॉजी अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन, जैसा नाम से ही जाहिर है, ये एक संक्षिप्त लेकिन बहुत गहरी समझ देती है।
और फ्रीडन का पहला काम, जैसा हमने कहा, इस शब्द से जुड़ी नकारात्मकता को हटाना है।
वो कहते हैं विचारधारा कोई बुरी चीज नहीं, बल्कि एक जरूरी पॉलिटिकल मैप है, एक राजनीतिक नक्शा।
नक्शा, यह अच्छा उदाहरण है,
है ना? सोचिए अगर हम किसी अनजान शहर में बिना नक्शे के हों तो कैसा महसूस होगा, भटका हुआ, कंफ्यूज्ड।
हाँ बिल्कुल, दुशाहीन।
वैसे ही राजनीतिक दुनिया भी बिना किसी वैचारिक नक्शे के समझ से परे हो जाएगी। विचारधारा हमें वो दिशा, वो समझ देती है, उसका ये एक अहम रोल है।
और ये नक्शा बनता कैसे, मतलब इसके हिस्से क्या हैं?
फ्रीडन बताते हैं कि विचारधाराएं असल में राजनीतिक विचारों या अवधारणाओं को जैसे आज़ादी, बराबरी, न्याय, इनको एक खास तरीके से अरेंज करती हैं, व्यवस्थित करती हैं।
अच्छा,
हर विचारधारा इन शब्दों को थोड़े अलग मायने देती है, उन्हें एक दूसरे से अलग तरह से जोड़ती है।
तो किताब का मकसद ये है कि हम इन अलग अलग नक्शों को पढ़ना सीखें।
एग्जैक्टली, हम समझ सकें कि जब दो अलग अलग लोग न्याय की बात कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि उनका मतलब एक ही हो, उनके वैचारिक नक्शे अलग हो सकते हैं।
और ये किताब हमें उन नक्शों के नीचे छुपी हुई जो संरचनाएं हैं उनको पहचानने का हुनर देती है।
बिल्कुल, तो थोड़ा और गहराई में चलें, अध्यायवार देखते हैं।
हाँ देखते हैं। तो फ्रीडन शुरुआत करते हैं इसी सवाल से कि आखिर ये विचारधारा है क्या चीज। वो बताते हैं कि कैसे इतिहास में इस शब्द का इस्तेमाल अक्सर दूसरों को गलत ठहराने, नीचा दिखाने के लिए होता रहा है।
हाँ, जैसे मार्क्स का वो मिथ्या चेतना वाला विचार, फॉल्स कॉन्शियसनेस।
हाँ, कि ये शासक वर्ग का तरीका है जिससे वो शोषितों को असलियत देखने से रोकता है अपनी सत्ता कायम रखने के लिए।
लेकिन फ्रीडन कहते हैं कि भाई ये परिभाषा तो बहुत संकीर्ण है और खुद भी एक तरह से देखें तो पक्षपाती है।
वो 20वीं सदी के उस विचार को भी खारिज करते हैं कि अब विचारधारा का अंत हो गया है, the end of ideology।
हाँ, कि अब बस प्रैक्टिकल नीतियां ही मायने रखती हैं, विचारधारा वगैरह सब पुरानी बातें हो गई।
फ्रीडन का मानना है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। विचारधारा तो हर समाज का एक स्थायी, एक परमानेंट और जरूरी हिस्सा है।
तो फिर उनकी अपनी परिभाषा क्या है, वो विचारधारा को कैसे देखते हैं?
वो कहते हैं विचारधाराएं राजनीतिक सोच की व्यवस्थाएं हैं, सिस्टम्स हैं।
अच्छा, सिस्टम्स। और इनका रोल क्या है इन सिस्टम्स का?
इनका रोल है कि इनके जरिए लोग और समूह, मतलब व्यक्ति और ग्रुप्स, राजनीतिक दुनिया को समझते हैं और फिर उसी समझ के आधार पर उसमें एक्ट करते हैं, काम करते हैं।
तो ये एक तरह से न्यूट्रल परिभाषा हुई।
हाँ बिल्कुल, ये अच्छी या बुरी नहीं कह रही है, बस बता रही है कि विचारधारा करती क्या है, उसका फंक्शन क्या है।
ठीक है, तो अब सवाल ये है कि ये सिस्टम बनता कैसे है, इसके पुर्जे क्या हैं?
यहाँ फ्रीडम बात करते हैं विचारधाराओं के बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स की, और ये हैं राजनीतिक अवधारणाएं, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स।
जैसे
आजादी, बराबरी, न्याय, व्यवस्था, समुदाय, अधिकार, ये सारे शब्द जो हमारी राजनीतिक बहसों में दिन रात गूंजते रहते हैं।
हाँ, ये तो हम रोज सुनते हैं।
लेकिन यहाँ एक, आप कह सकते हैं, दिलचस्प पेज है। फ्रीडन कहते हैं कि ये अवधारणाएं, ये कॉन्सेप्ट्स स्वाभाविक रूप से, आवश्यक रूप से विवादित होते हैं, एसेंशियली कंटेस्टेड।
एसेंशियली कंटेस्टेड, इसका क्या मतलब हुआ?
इसका मतलब है कि इनका कोई एक सबके लिए मान्य, बिल्कुल पक्का अर्थ नहीं होता।
अच्छा, उदाहरण से समझाएंगे।
हाँ बिल्कुल, जैसे मान लीजिए हम पूछें सबसे अच्छा खाना कौन सा है, तो कोई कहेगा दाल चावल, कोई बिरयानी, कोई पिज्जा, कोई एक जवाब नहीं है ना, सबका अपना अपना नजरिया है।
सही बात है, राजनीति में आजादी या न्याय जैसे शब्द भी कुछ ऐसे ही हैं। क्या आजादी का मतलब सिर्फ सरकार की दखलंदाजी से मुक्ति है? या फिर गरीबी, अशिक्षा और भेदभाव से मुक्ति ज्यादा जरूरी आजादी है?
बिल्कुल,
इन पर हमेशा बहस चलती रहती है, कोई फाइनल जवाब नहीं मिलता।
और यही पर फ्रीडन कहते हैं विचारधारा का असली रोल सामने आता है।
अच्छा, कैसे?
फ्रीडन समझाते हैं कि विचारधारा का एक मुख्य काम, एक मुख्य मकसद है इन धुंधले, इन विवादित शब्दों को एक खास, भले ही अस्थायी तौर पर, लेकिन निश्चित अर्थ देना।
उन्हें एक परिभाषा देना।
हाँ, और ये काम वो कैसे करती है? वो इन शब्दों को एक खास पैटर्न में, एक खास ढांचे में फिट करके करती है।
मतलब शब्दों को एक दूसरे से जोड़कर?
बिल्कुल। उदाहरण के लिए सोचिए, एक विचारधारा है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सबसे ऊपर रखती है,
जैसे लिबर्टेरियन सोच।
ठीक है,
वो आजादी को मुख्य रूप से सरकारी नियंत्रण की कमी के तौर पर देखेगी, स्टेट का कम से कम दखल।
वही दूसरी विचारधारा है जो सामाजिक न्याय पर ज्यादा जोर देती है।
हाँ,
वो शायद बराबरी को अपना केंद्रीय बिंदु बनाएगी,
और उसके लिए आजादी का मतलब शायद अलग होगा।
हाँ, उसके लिए आजादी तभी सार्थक होगी या वो गरीबी या अवसरों की कमी से मुक्ति दिलाए, और इसके लिए शायद ज्यादा सरकारी भूमिका, ज्यादा दखल जरूरी माना जाए।
अच्छा, तो दोनों आजादी की बात कर रहे हैं, पर उनके नक्शे में इस शब्द की जगह और उसका मतलब बिल्कुल अलग है।
एग्जैक्टली।
और यही फ्रीडन का वो संरचनात्मक विश्लेषण काम आता है,
मॉर्फोलॉजिकल अप्रोच।
हाँ, वो कहते हैं कि किसी विचारधारा को समझने के लिए सिर्फ ये देखना काफी नहीं कि वो किन शब्दों का इस्तेमाल करती है,
क्योंकि ज्यादातर तो सभी अच्छे अच्छे शब्द इस्तेमाल करते हैं, न्याय, शांति, विकास।
बिल्कुल,
असली फर्क इस बात से पड़ता है कि वो इन शब्दों को किस तरह एक दूसरे से जोड़ती है,
किसे ज्यादा महत्व देती है, किसे केंद्र में रखती है, किसे किनारे कर देती है।
इसके लिए उन्होंने वो तीन स्तरों वाला मॉडल दिया था ना। हाँ, जो एक सौर मंडल जैसा है, बहुत अच्छा तरीका है समझने का।
हाँ, बताइए उसके बारे में।
तो पहला स्तर है मूल अवधारणा, कोर कॉन्सेप्ट। ये विचारधारा का सूरज है, सबसे केंद्रीय विचार जिसके चारों ओर सब कुछ घूमता है।
जैसे उदारवाद के लिए स्वतंत्रता, या समाजवाद के लिए समानता।
हाँ, या राष्ट्रवाद के लिए राष्ट्र। फिर दूसरा स्तर है आसन्न अवधारणाएं,
एडजेसेंट कॉन्सेप्ट्स।
ये सूरज के करीबी ग्रह हुए।
बिल्कुल, ये मूल अवधारणाओं को परिभाषित करने, उसे सहारा देने और उसका मतलब साफ करने के लिए जरूरी हैं। जैसे उदारवाद में अधिकार, तर्क, व्यक्तिवाद, ये सब स्वतंत्रता के आसपास घूमते हैं
और बताते हैं कि यहाँ किस तरह की स्वतंत्रता की बात हो रही है।
सही।
और तीसरा स्तर है परिधीय अवधारणाएं,
पेरिफेरल कॉन्सेप्ट्स।
ये दूर के ग्रह हैं,
मतलब उतने जरूरी नहीं।
विचारधारा का हिस्सा तो है, पर उसकी पहचान के लिए उतने केंद्रीय नहीं। और इनका अपना मतलब भी अक्सर मूल और आसन्न अवधारणाओं से ही तय होता है, जैसे लोकतंत्र।
अच्छा, किसी विचारधारा के लिए ये बहुत जरूरी हो सकता है, किसी के लिए थोड़ा कम।
बिल्कुल, ये मॉडल सच में सोचने का एक नया तरीका देता है। ये दिखाता है कि विचारधाराएं सिर्फ विचारों का एक ढेर नहीं है, बल्कि एक व्यवस्थित, एक स्ट्रक्चर्ड ढांचा है।
और अगर आप वो सूरज बदल दें, यानी मूल अवधारणा बदल दें, तो बाकी सारे ग्रहों की स्थिति और मायने भी बदल जाएंगे।
हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब फ्रीडन आगे बढ़ते हैं। हमने अंदरूनी बनावट समझ ली, अब वो पूछते हैं कि ये विचारधाराएं असल दुनिया में करती क्या है, इनका रोल या फंक्शन क्या है समाज में।
हाँ, ये अहम सवाल है।
वो कई मुख्य काम बताते हैं। पहला, स्पष्टीकरण।
एक्सप्लेनेशन
मतलब
दुनिया को समझाना।
हाँ, ये हमें समझाती हैं कि दुनिया जैसी है वैसी क्यों है। समाज और राजनीति की जो उलझने हैं उनको सुलझाने का एक फ्रेमवर्क देती हैं।
दूसरा,
मूल्यांकन। ये हमें चीजों को अच्छा या बुरा आंकने का पैमाना देती हैं। क्या सही है, क्या गलत है, ये तय करने में मदद करती हैं।
तीसरा है अभिविन्यास।
ओरिएंटेशन
मतलब दिशा देना।
हाँ, एक तरह से
ये हमें पहचान देती हैं, बताती हैं कि हम कौन हैं और समाज में हमारी जगह क्या है, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग देती हैं।
और चौथा,
राजनीतिक कार्यक्रम। ये बताती हैं कि आगे क्या करना चाहिए, मौजूदा हालात को बनाए रखना है या बदलना है, और अगर बदलना है तो कैसे, एक एक्शन प्लान देती हैं।
ये चारों तो काफी सीधे लगते हैं।
हाँ, लेकिन इन सब में एक काम शायद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और दिलचस्प है, जिसे फ्रीडन कहते हैं, विवाद मुक्ति।
डीकंटेस्टेशन।
ये थोड़ा मुश्किल शब्द है।
हाँ, पर इसका आइडिया बहुत पावरफुल है।
याद है हमने कहा था कि राजनीतिक शब्द विवादित होते हैं,
एसेंशियली कंटेस्टेड।
हाँ, कि उनका कोई एक मतलब नहीं होता।
बिल्कुल।
तो विचारधारा का एक बड़ा मकसद, एक बड़ा रोल होता है इन शब्दों को विवाद मुक्त करना।
विवाद मुक्त करना मतलब
बहस खत्म करना एक तरह से। हाँ, मतलब ये कि विचारधारा किसी शब्द जैसे न्याय, विकास, राष्ट्र की अपनी जो खास व्याख्या है उसको ऐसे पेश करती है जैसे वही एकमात्र सही या प्राकृतिक या कॉमन सेंस वाली व्याख्या हो।
उदाहरण के तौर पे
सोचिए, जब कोई नेता कहता है हम ही असली जनता की आवाज है।
हाँ, ये तो बहुत सुना है।
तो वो असल में जनता शब्द को इस तरह से परिभाषित कर रहा है कि उसके समर्थक उसमें फिट हो जाएं और जो उसके विरोधी हैं वो उससे बाहर हो जाएं। वो इस बात पर बहस ही नहीं होने देना चाहता कि जनता का मतलब कुछ और भी हो सकता है, उसमें और लोग भी शामिल हो सकते हैं।
हाँ, ये बात तो है। भारत में हम ये रोज देखते हैं।
बिल्कुल, कैसे विकास की एक खास परिभाषा को ही असली विकास बताया जाता है या राष्ट्रवाद की एक खास रूप को ही सच्चा राष्ट्रवाद कहा जाता है,
और जो उससे सहमत ना हो उसे देशद्रोही तक कह दिया जाता है।
सही कहा, ये विवाद मुक्ति ही विचारधाराओं को इतनी ताकत देती है, क्योंकि ये बहस को शुरू होने से पहले ही खत्म करने की कोशिश करती है, अपनी बात को ऑब्वियस, नेचुरल बनाकर पेश करती है।
ये वाकई गौर करने वाली बात है। अच्छा, फ्रीडन ये भी बताते हैं कि विचारधाराएं एकदम हवा में नहीं बनती, उन पर कुछ सीमाएं, कुछ कंस्ट्रेंट्स भी होती हैं।
हाँ, ऐसा नहीं कि कुछ भी कह दिया और वो विचारधारा बन गई।
नहीं, जैसे वो थोड़ी बहुत तार्किक रूप से सुसंगत होनी चाहिए, मतलब उसमें एकदम खुला विरोधाभास नहीं होना चाहिए, वरना लोग भरोसा कैसे करेंगे। और
उन्हें समाज की जो मौजूदा भाषा है, संस्कृति है, जो ऐतिहासिक अनुभव है, उनसे भी जुड़ना पड़ता है। आप एकदम से कोई बिल्कुल बाहरी या अजीब विचार समाज पर थोप नहीं सकते, उसे कहीं ना कहीं लोगों की समझ से कनेक्ट करना पड़ता है।
और वो विचारधारा और राजनीतिक सिद्धांत में भी फर्क करते हैं ना, पॉलिटिकल थ्योरी।
हाँ, ये भी एक जरूरी बात है। अक्सर लोग विचारधारा को बस खराब राजनीतिक सिद्धांत या बिगड़ा हुआ दर्शन समझ लेते हैं, जैसे कि सिद्धांत तो ऊंची चीज है और विचारधारा थोड़ी हल्की।
हाँ, कुछ ऐसा। लेकिन फ्रीडन कहते हैं कि नहीं, ये सही नजरिया नहीं है। दोनों का रोल और मकसद ही अलग है।
कैसे?
राजनीतिक सिद्धांत का लक्ष्य होता है एकेडमिक कठोरता, तार्किकता, शायद कोई यूनिवर्सल सच खोजना। ये ज्यादातर यूनिवर्सिटी और किताबों की दुनिया है।
और विचारधारा?
विचारधारा का लक्ष्य ज्यादा व्यावहारिक होता है, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, यानी लोगों को साथ लाना, उन्हें किसी बात के लिए मनाना, समाज को जोड़ना।
अच्छा,
इसके लिए वो थोड़ी बहुत तार्किक ढील भी दे सकती है अगर उससे ज्यादा लोग जुड़ते हों। उसका फोकस असर डालने पर ज्यादा होता है, परफेक्ट लॉजिक पर थोड़ा कम।
तो मतलब विचारधारा राजनीतिक सिद्धांत का बिगड़ा हुआ रूप नहीं है?
नहीं, बल्कि अपने नियमों और अपने मकसदों के साथ राजनीतिक विचार का एक अलग और जरूरी रूप है। उसका अपना एक फंक्शन है। और किताब के अंत में फ्रीडन आज की दुनिया को देखते हैं।
हाँ, वो फिर से वो विचारधारा के अंत वाली बात को नकारते हैं। कहते हैं ये बात गलत थी।
वो कहते हैं कि वैश्वीकरण, लोक लुभावनवाद, पॉपुलिज्म, पर्यावरणवाद, नारीवाद, ये सब जो हम देख रहे हैं,
ये विचारधारा के खत्म होने के संकेत नहीं है।
नहीं, बल्कि उसके बदलने और विकसित होने के संकेत हैं। विचारधाराएं मर नहीं रही, वो रूप बदल रही हैं।
जैसे?
जैसे पर्यावरणवाद को देखें तो शायद टिकाऊपन या सस्टेनेबिलिटी एक नई मूल अवधारणा के रूप में उभर रही है। एक नया सूरज बन रहा है जो पुरानी विचारधाराओं के ग्रहों को अपनी ओर खींच रहा है या चुनौती दे रहा है।
दिलचस्प। और लोक लुभावनवाद, पॉपुलिज्म?
उसे वो एक पतली विचारधारा की तरह समझाते हैं।
पतली?
हाँ,
मतलब
उसकी अपनी कोई बहुत गहरी या विस्तृत संरचना नहीं होती। वो मुख्य रूप से दुनिया को एक सरल विरोध पर टिका देती है, आम लोग बनाम भ्रष्ट एलीट।
अच्छा।
और ये पतली विचारधारा अक्सर किसी मोटी विचारधारा के साथ जुड़ जाती है, जैसे राष्ट्रवाद या समाजवाद, और उसे ताकत लेती है।
समझ गया। तो फ्रीडन का निष्कर्ष क्या है? फाइनल बात।
निष्कर्ष साफ है, जब तक इंसान समाज में रहेंगे और जब तक इस बात पर असहमत होंगे कि हमें मिलकर अपना जीवन कैसे चलाना चाहिए,
जो कि हमेशा ही रहेंगे।
हाँ बिल्कुल, तब तक विचारधारा एक जरूरी और ताकतवर चीज बनी रहेगी, उसका रोल खत्म नहीं होने वाला।
तो इस पूरी बातचीत से अगर कुछ खास बातें, कुछ टेकअवेज निकालने हो तो क्या होंगे?
मेरे ख्याल से पहली और सबसे जरूरी बात तो यही है कि विचारधारा एक जरूरी राजनीतिक नक्शा है। ये कोई सोचने की कमी या बीमारी नहीं है।
हाँ, बल्कि दुनिया की जटिलताओं को समझने और उसमें रास्ता खोजने का एक औजार है। इसका रोल अनिवार्य है, इसे बचा नहीं जा सकता।
दूसरी बात, फ्रीडन का संरचनात्मक विश्लेषण, मॉर्फोलॉजी। किसी विचार का मतलब सिर्फ शब्दकोश में नहीं मिलता, बल्कि उस वैचारिक नक्शे में उसकी जगह से तय होता है।
बिल्कुल। आज़ादी का मतलब इस पर निर्भर करता है कि वो किस विचारधारा के सौर मंडल में, किस कोर कॉन्सेप्ट के आसपास स्थित है।
फिक्स्ड ऑब्जेक्टिव मतलब नहीं होता।
और राजनीति काफी हद तक इन शब्दों के अपने मतलब को समाज पर लागू करवाने की, उसे स्थापित करने की लड़ाई है।
चौथी, वो विवाद मुक्ति वाली बात। ये विचारधारा का एक छुपा हुआ पर बहुत शक्तिशाली मकसद है।
हाँ, अपनी व्याख्या को कॉमन सेंस या प्राकृतिक बनाकर पेश करना। और हमें हमेशा ये सवाल पूछना चाहिए कि जब कोई चीज़ स्वाभाविक या सब जानते हैं कहकर पेश की जा रही है, तो कहीं वो किसी खास विचारधारा की विवाद मुक्ति तो नहीं।
बिल्कुल। भारत में विकास, सुरक्षा, परंपरा जैसे शब्दों के इस्तेमाल में ये हमें खूब देखने को मिलता है।
और पांचवी बात, विचारधारा बनाम सत्य का जो एक झूठा बंटवारा हम करते हैं, उसे तोड़ना।
हाँ, फ्रीडन कहते हैं कि ये सोचना गलत है कि विचारधारा हमेशा सच, तर्क या विज्ञान के खिलाफ होती है।
संगत या वैज्ञानिक बताए, किसी न किसी वैचारिक नींव पर ही टिकी होती है।
तो सवाल ये नहीं कि विचारधारा होनी चाहिए या नहीं,
सवाल ये है कि कौन सी विचारधाराएं मैदान में हैं, उनका ढांचा क्या है और उनका मकसद क्या है, उनका असर क्या हो रहा है।
इस किताब में सीधे कोट करने लायक पंक्तियां शायद उतनी ना हो, लेकिन फ्रीडन के जो मूल विचार हैं वो बहुत गहरे हैं।
हाँ, जैसे केंद्रीय विचार ये है, विचारधाराएं सत्य के दुश्मन नहीं हैं, वे वो जरूरी ढांचे हैं जिनके जरिए इंसान राजनीतिक दुनिया को समझते हैं और उसमें काम करते हैं। सबसे खतरनाक राजनीतिक रवैया ये मानना है कि आपकी कोई विचारधारा नहीं है।
ये बात वाकई सोचने पर मजबूर करती है। मतलब जो लोग कहते हैं ना कि मेरी कोई विचारधारा नहीं, फ्रीडन के हिसाब से वो शायद अपनी ही विचारधारा को पहचान नहीं पा रहे।
हाँ, या वो उसे इतना स्वाभाविक मान चुके हैं, इतना कॉमन सेंस मान चुके हैं कि उन्हें लगता ही नहीं कि एक विचारधारा है। ये हमें खुद अपने नजरिए पर सवाल उठाने को कहता है।
एक और अहम विचार जो संरचना पर जोर देता है, किसी राजनीतिक शब्द का असली मतलब उसके आसपास के दूसरे शब्दों से उसके रिश्ते में छिपा होता है। अगर आप किसी विचारधारा की केंद्रीय शब्द को बदल दें तो बाकी सभी शब्दों के मायने भी उसके साथ बदल जाते हैं।
ये बताता है कि राजनीतिक भाषा कितनी लचीली है, कितनी संदर्भ पर निर्भर करती है। इसीलिए तो राजनीतिक बहसों में अक्सर शब्दों के अर्थ पर ही लड़ाई होती रहती है, कौन किस शब्द को कैसे परिभाषित कर रहा है।
और एक विवाद मुक्ति पर आधारित विचार, हर सफल विचारधारा का एक मुख्य काम होता है विवाद मुक्ति, यानी न्याय या जनता जैसे बहुरूपी विवादित शब्दों को पकड़ना और उनकी अपनी खास व्याख्या को एकमात्र जायज और प्राकृतिक व्याख्या बना के पेश करना।
ये हमें सिखाता है कि कैसे विचारधाराएं अपनी बात को मनवाने के लिए बहस के दरवाजे ही बंद करने की कोशिश करती हैं।
हाँ, अपनी दुनिया को नॉर्मल बनाकर। ये हमें राजनीतिक भाषणों और मीडिया की भाषा को ज्यादा ध्यान से, ज्यादा क्रिटिकली सुनने के लिए प्रेरित करता है।
तो अब असली सवाल, हम मतलब आम लोग फ्रीडन के इन विचारों का अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या करें, इनका इस्तेमाल कैसे हो सकता है?
मुझे लगता है सबसे पहला कदम तो है राजनीतिक भाषा को डिकोड करना सीखना।
डिकोड करना मतलब?
मतलब जब हम कोई भाषण सुने, कोई समाचार पढ़ें या सोशल मीडिया पर कुछ देखें, तो हम पूछ सकते हैं यहाँ कौन सा विचार केंद्र में रखा जा रहा है, राष्ट्र, विकास, सुरक्षा जैसे शब्दों को कैसे परिभाषित किया जा रहा है।
हाँ, और कौन सी बातें कही जा रही हैं और शायद कौन सी बातें गोल कर दी जा रही हैं, इस बयान के पीछे का असली नक्शा क्या है।
बिल्कुल। दूसरा, ये बेहतर राजनीतिक बातचीत में मदद कर सकता है शायद।
वो कैसे?
अगर हम समझें कि जिससे हम असहमत हैं वो शायद एक अलग पर अपने आप में सुसंगत वैचारिक नक्शे से दुनिया को देख रहा है, तो हम सिर्फ उसे गलत या बेवकूफ या बिका हुआ कहने से आगे बढ़ सकते हैं।
हाँ, हम पूछ सकते हैं कि उसकी मूल प्राथमिकता क्या है, वो इस नतीजे पर क्यों पहुंचा या पहुंचे।
हाँ, जैसे स्वास्थ्य सेवाओं पर बहस सिर्फ आंकड़ों की नहीं होती, ये अक्सर व्यक्तिगत पसंद की स्वतंत्रता बनाम सबके लिए समान पहुंच की समानता, ऐसी गहरी वैचारिक प्राथमिकताओं का टकराव होती है। इसे समझने से शायद थोड़ी बेहतर बहस हो।
तीसरा, ये खुद को बेहतर समझने में मदद करता है, सेल्फ अवेयरनेस। हम खुद से पूछ सकते हैं, मेरे अपने राजनीतिक नक्शे का सूरज क्या है, कौन से मूल्य मेरे लिए सबसे अहम है, ये चीजें टैक्स, शिक्षा या पर्यावरण नीति पर मेरे विचारों को कैसे शक्ल देती हैं?
और क्या मैं भी अनजाने में अपनी कुछ मान्यताओं को विवाद मुक्त मानकर चल रहा हूँ, उन्हें कॉमन सेंस समझ रहा हूँ?
बिल्कुल। और चौथा, ये आज की राजनीतिक घटनाओं को समझने में मदद करता है, जैसे दुनिया भर में लोक लुभावनवाद का उभार, जिसकी वो पतली सी विचारधारा असली लोग बनाम भ्रष्ट एलीट पर टिकी है,
या पर्यावरण के मुद्दे का बढ़ता महत्व जो शायद स्थिरता को एक नई केंद्रीय अवधारणा बना रहा है। हम देख सकते हैं कि ये नए नक्शे कैसे पुरानों को चुनौती दे रहे हैं और बदल रहे हैं।
तो अंत में आपके लिए सबसे बड़ी सीख या सबसे दिलचस्प बात क्या रही इस किताब से?
मेरे लिए शायद सबसे बड़ी सीख यही रही कि विचारधारा कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे हमें डरना या पीछा छुड़ाना है। ये मानव समाज का एक स्थायी और जरूरी हिस्सा है, इसका एक खास रोल है, और फ्रेडन का वो संरचनात्मक तरीका, वो हमें इन जटिल राजनीतिक विश्वासों के छिपे हुए ढांचे को बिना जजमेंटल हुए समझने का एक बहुत शक्तिशाली औजार देता है।
अक्सर किसी खास विचारधारा की जीत का नतीजा होती है, किसी के द्वारा स्थापित की गई होती है।
हाँ।
ये हमें मीडिया और नेताओं की भाषा के प्रति ज्यादा सचेत और आलोचनात्मक बनाती है। हमेशा ये पूछना जरूरी है कि किसका नक्शा यहाँ डिफॉल्ट नक्शे की तरह, प्राकृतिक नक्शे की तरह पेश किया जा रहा है और क्यों।
और शायद सोचने के लिए एक आखिरी सवाल ये छोड़ सकते हैं कि अगर हम सबके पास ये वैचारिक नक्शे हैं और ये दुनिया को समझने के लिए जरूरी भी हैं, तो क्या कुछ नक्शे दूसरों से बेहतर हो सकते हैं?
बेहतर किस मायने में?
शायद इस मायने में कि क्या कोई ऐसा नक्शा हो सकता है जो हमें ज्यादा न्यायपूर्ण, ज्यादा टिकाऊ या ज्यादा शांतिपूर्ण भविष्य की ओर ले जाए।
ये एक बड़ा सवाल है। फ्रीडन हमें इन नक्शों का विश्लेषण करने के तरीके तो देते हैं, लेकिन कौन सा रास्ता चुनना है, कौन सा नक्शा फॉलो करना है, ये फैसला शायद हम पर ही छोड़ते हैं।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।